नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं निखिल रामपाल और उर्जिता भारद्वाज की रिपोर्ट, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे पंजाब में शिवसेना नाम से कई संगठन अस्तित्व में हैं, जिनके नाम पटियाला संघर्ष के बाद उभर कर सामने आए हैं। पिछले शुक्रवार पटियाला में खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन को लेकर सिख और हिंदू समूहों के बीच हिंसक टकराव ने पंजाब में शिवसेना को उजागर कर दिया है, जिसने कथित रूप से रैली का आह्वान किया था। लेकिन ये मामला उतना सीधा नहीं है। राज्य में कई देसी शिवसेनाएं हैं जिनका जाहिरी तौर पर नाम के अलावा महाराष्ट्र स्थित शिवसेना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। शुक्रवार की घटना के कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया, जो राज्य में शिवसेना बाल ठाकरे का कार्यकारी अध्यक्ष होने का दावा करते थे। बाद में जल्द ही खबरें आ गईं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, जो महाराष्ट्र स्थित शिवसेना की पंजाब इकाई है। लेकिन पार्टी नाम के बाद में सफिक्स यानी कोई और शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है? पंजाब में पार्टी प्रमुख योगराज शर्मा के अनुसार ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि राज्य में बहुत सारी असंबंधित शिवसेनाएं मौजूद हैं। शर्मा ने कहा कि हमें विशेष रूप से कहना पड़ता है कि हम उस शिवसेना का हिस्सा हैं जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में की है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में 15-16 फर्जी शिवसेनाएं हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, न ही कोई पंजीकृत हैं, जिनका हमारे मुंबई कार्यालय से कोई वास्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा नाम रखती हैं। पंजाब की शिवसेनाएं जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, उनमें कुछ हैं शिवसेना हिंदू, शिवसेना पंजाब, शिवसेना टकसाली, शिवसेना हिंदुस्तान, शिवसेना शेर ए हिंद और शिवसेना समाजवादी। शर्मा और नाम न बताने की शर्त पर पंजाब कांग्रेस तथा अकाली दल के नेताओं ने कहा कि इन स्वयंभू शिवसेनाओं की कोई राजनीतिक वैधता नहीं है, ये चुनाव नहीं लड़ती और सिख समूहों से टकराव को भड़काने के अलावा इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। हालांकि इनमें से कई अधिकतर शिवसेनाएं हाशिए पर काम कर रहे मामूली समूह हैं, लेकिन इनमें से कई को राज्य द्वारा स्वीकृत सुरक्षा मिली हुई है। मसलन गिरफ्तारी के समय सिंगला के पास एक्स श्रेणी की सुरक्षा थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इससे उन्हें अपने रसूख के दिखावे में मदद मिलती है और वो बेधड़क होकर आग लगाने वाले बयान देते रहते हैं। आखिर शिवसेनाओं की ये बहुतायत कैसे पैदा हुई और ये क्या काम करती हैं? उथल पुथल भरे 1980 के दशक के मध्य में खालिस्तानी उग्रवाद के दिनों में, जब राम जन्मभूमि मुद्दा भी जोर पकड़ रहा था, तो उत्तर भारत में दो अलग अलग राजनीतिक धाराएं हिंदू पहचान के इर्द गिर्द एक साथ मिल रही थीं। 1986 में इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में हर जगह हिंदुओं की आवाज होने का दावा करता था, लेकिन पंजाब में ये शिवसेना थी जिसने खुद को इस भूमिका में रखा था। पंजाब की शिवसेना महाराष्ट्र की अपनी पुरानी हमनाम से काफी अलग थी, जिसकी स्थापना 1966 में बाल ठाकरे ने की थी। दोनों शिवसेनाओं ने एक कठोर हिंदुत्व रुख इख्तियार किया और महाराष्ट्र के शिवसैनिकों ने 17वीं सदी के मराठा योद्धा शासक छत्रपति शिवाजी से अपनी प्रेरणा ली, लेकिन इस बीच उनके पंजाब समकक्षियों ने अपने आप को भगवान शिव के सैनिकों के रूप में ढाला, जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं में से एक हैं। और जहां महाराष्ट्र की शिवसेना ने 1980 के दशक में मुख्य रूप से मुसलमानों और बाहरी लोगों के खिलाफ एक आक्रामक रुख अख्तियार किया, वहीं पंजाब की शिवसेना ने काफ़ी हद तक सिखों को अपने निशाने पर रखा। इसके अलावा पंजाब की शिवसेना में शुरू से ही कई गुट हो गए थे। तथाकथित लुधियाना गुट के शुरुआती नेताओं में एक थे जगदीश टांगड़ी, जिन्हें 2002 में कई अन्य लोगों के साथ हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनमें कथित रूप से सैकड़ों तलवारें और बहुत से कृपाण व बंदूकें थीं। टांगड़ी को 2011 में 3 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2013 में 80 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पिछले साल एक इंटरव्यू में उनके बेटे सुनील टांगड़ी, जिन्हें हथियार मामले में सजा सुनाई गई थी, उन्होंने कहा कि शिवसेना की जड़ें पंजाब में थीं। 1980-81 में हमने अपने धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप भगवान शिव के नाम पर इस पार्टी की स्थापना की थी। सुनील टांगड़ी अब अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी कही जाने वाली एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, जो कि बठिंडा से 2 बार लोकसभा चुनाव साल 2009 और साल 2014 में लड़े और हारे हैं। उसने 2002 में 4 और 2007 में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी पर हार गई। पंजाब की किसी भी देसी शिवसेना का कुल मिलाकर यही चुनावी इतिहास है। पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी में धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर गुरमीत सिंह सिद्धू के अनुसार, राज्य की तमाम शिवसेनाएं सांप्रदायिक संगठन हैं जिनका कोई राजनीतिक वैधता नहीं है। सिद्धू ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन पंजाब में शिवसेना की ऐसी कोई राजनीतिक ब्रांडिंग नहीं है। फिर भी ये नाम बना रहा है और बहुत से संगठनों ने इसे हथिया लिया है, जिनके सही कामकाज और मूल शिवसेना के साथ उनके रिश्तों पर भ्रम ही बना रहा है। लेकिन सवाल है कि पंजाब में आज के शिवसैनिक करते क्या हैं। मूल शिवसेना और सुनील टांगड़ी की अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी ने भी पंजाब में मौजूद अनिश्चित मूल की बहुत सी शिवसेनाओं की शिकायतें की हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा ने द प्रिंट से कहा कि आज के पंजाब के तथाकथित शिवसैनिक जनता के लिए कुछ नहीं करते, वो बस अपने अहंकार को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान शिवसेना ने लोगों को राहत पहुँचाने में सराहनीय कार्य किया था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। असली शिवसैनिक लोगों के मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो महंगाई हो या बिजली कटौती, लेकिन ये लोग बेकार के मुद्दों का राग लापते हैं और विवादित बयान देते रहते हैं। पहले हवाला दिए गए एक इंटरव्यू में सुनील टांगड़ी ने शिकायत की कि पंजाब के स्वयंभू शिवसैनिक आलसी हैं और ऐसे मुद्दे नहीं उठाते जो लोगों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बजाय वो अतीत में डूबे हुए हैं और उन पर अभी भी उग्रवाद की चिंता सवार है, हालांकि अब वो कई अहम मुद्दा नहीं रह गया है। ये आकलन कोई बहुत गलत नहीं है। पंजाब के अलग अलग शिवसैनिकों में जो चीज़ आम है वो है खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन के खिलाफ उनकी निरंतर बयानबाजी, जो 1980 के दशक से 1990 के शुरुआती दशक तक एक ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन फिलहाल उसके सिर्फ अंगारे ही बचे हैं। पंजाब के शिवसैनिकों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न फेसबुक पन्नों से एक तरह का पैटर्न सामने आता है। पहले वो खालिस्तान की निंदा करते हैं, जिसमें अक्सर तीखे अपशब्द होते हैं, और फिर स्थानीय खबरों के लेख साझा करते हैं जिनमें सिख उग्रवादियों से धमकियां मिलने की बातें होती हैं। इन दावों की सच्चाई की कोई गारंटी नहीं होती। मसलन 2017 में शिवसेना हिंद के कई सदस्यों को कथित रूप से धमकियां मिलने की झूठी कहानियां बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब ऐसा क्यों करते हैं। तो 2017 के मामले में फर्जी धमकियों के पीछे का उद्देश्य कथित तौर पर अधिक पुलिस सुरक्षा बल हासिल करना था। योगराज शर्मा के अनुसार बहुत सी शिवसेनाओं के अंदर आज भी यही इच्छा रहती है। उन्होंने कहा कि उनकी एक कार्यप्रणाली होती है, सिखों के खिलाफ चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, और फिर इनका इस्तेमाल पुलिस से सुरक्षा हासिल करने के लिए करेंगे। तो आखिर अधिक सुरक्षा की इनकी इच्छा क्यों है? शर्मा ने कहा कि हाशिए के वो समूह जिन्हें कोई सियासी पार्टी बहुत गंभीरता से नहीं लेती, सुरक्षा कवर से उनके बहुत सारे काम पूरे होते हैं। उनके भीड़ को भड़काने वाले तरीके अगर उल्टे भी पड़ जाएं, तो इस पुलिस सुरक्षा से उनके महत्व और संरक्षण का एक आभामंडल सा बना रहता है। शर्मा ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि वो अन्यथा असुरक्षित महसूस करते हैं। जब वो बाहर लोगों के बीच जाते हैं और अगर उनके साथ 10-15 पुलिसकर्मी चल रहे हैं, तो ऐसे में उनके मत को वैधता सी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इस सब के ऊपर एक ठोस सुरक्षा कवर रहने से शिवसैनिकों को लोगों को उकसाने और भड़काने की और छूट मिल जाती है। शर्मा ने आगे कहा कि वो बिना सोचे समझे किसी पर भी हाथ उठा सकते हैं, लेकिन इतने सब पुलिसकर्मियों के रहते हुए कोई पलट कर उन पर हाथ नहीं उठाता। जिस दिन ये सरकार इनकी सुरक्षा वापस ले लेगी, ये लोग अपने बाथरूम से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिंगला के पास कथित रूप से एक्स श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसमें दो हथियारबंद पुलिसकर्मी होते हैं। शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी के पास 2020 तक 15 पुलिसकर्मियों का एक प्रभावशाली सुरक्षा कवर था। शिवसेना पंजाब के अमित अरोड़ा के लिए पुलिस ने इसी साल उसका सुरक्षा कवर 4 से घटाकर 2 कर दिया, जब उसने धमकियां मिलने की शिकायत की थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसा कि पटियाला की हिंसा से साबित हुआ, पंजाब के शिवसेनाओं जैसे हाशिए के समूहों के पास भले ही राजनीतिक समर्थन न हो, लेकिन उनके नुकसान पहुंचाने की संभावना बनी रहती है। दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अजय साहनी ने द प्रिंट से कहा कि जब आपकी अर्थव्यवस्था घट रही हो और गुस्साए युवा देश छोड़कर जा रहे हों या यहाँ पर निराश बैठे हों, तो संभावना बनी रहती है कि लामबंद होकर वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। पंजाब में सांप्रदायिक टकरावों का इतिहास नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युवाओं को गुमराह नहीं किया जा सकता। साहनी के अनुसार हालांकि शिवसैनिकों का राज्य में कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन आग भड़काने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। उन्होंने कहा, ऐसे तत्वों की संख्या बढ़ रही है जो समाज को बांटना चाहते हैं। इन तत्वों को अलग करना होगा। पंजाब अभी बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसी स्थिति में आप माचिस नहीं चला सकते। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे। प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।